नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंच गए हैं। श्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी की ये इथियोपिया की पहली यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की दो दिन की जॉर्डन यात्रा संपन्न हुई। उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से व्यापक बातचीत की। इस दौरान कई समझौतों को अंतिम रूप दिया गया और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और शाह अब्दुल्ला ने आज अम्मान में भारत जॉर्डन व्यापार मंच को संयुक्त रूप से संबोधित किया। श्री अब्दुल्ला ने कहा कि जॉर्डन के मुक्त व्यापार समझौते और भारत की आर्थिक शक्ति से दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच आर्थिक कॉरिडोर सृजित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सभ्यागत मूल्यों पर निर्मित मजबूत साझेदारी है। उन्होंने अगले 5 वर्ष में जॉर्डन के साथ द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर $5 अरब करने का प्रस्ताव किया।
मैं यहाँ आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिजनेस की दुनिया में हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। ये विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2025 का स्थान लेगा। विधेयक विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य को 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इसमें कुछ कानूनों को रद्द करने और कुछ अन्य कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। ये 71 अधिनियमों को रद्द करता है। ये विधेयक 4 अधिनियमों में संशोधन भी करता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इसमें विधायी विभाग द्वारा चिन्हित पुराने कानूनों को रद्द करने का प्रावधान है। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कानूनों को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा आज संपन्न हो गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव से पहले भी हुआ है और ऐसा प्रमाण नहीं है कि उसके साथ छेड़छाड़ संभव है। तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन ने कहा कि गृहमंत्री ने कहा था कि मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य अपात्र मतदाताओं का पता लगाना, हटाना और निर्वासित करना है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आता है। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धन शोधन मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी जांच जारी रख सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सभी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रूपये देने की घोषणा की है। आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण कई बसों के टकराने से 13 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हुए हैं। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने मलेशिया को 315 रन से हराया। भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 408 रन बनाए। जवाब में मलेशिया की पूरी टीम 33वें ओवर में सिर्फ 93 रन पर ही सिमट गई। अभिज्ञान कुंडू ने नाबाद 209 रन की पारी खेली। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे लखनऊ में खेला जाएगा। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। 5वां और अंतिम मुकाबला 29 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।